ये है 22/5/89 का अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स 11 नंबर के रजिस्टर में 119 पेज 8। बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे थे। पोता मेल देने वाले 3 प्रकार के बच्चे थे। 3 प्रकार कौन से हैं? एक तो मुखवंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी है। मुखवंशावली। दूसरे बाप दादा के व ब्राह्मणों के स्मरण में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। बाप दादा का भी स्मरण करते तो ब्राह्मणों के स्मरण में लगे रहते अथवा उनको ही पुकारते रहते, उसी में मस्त रहते, वो भक्त। और तीसरे पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव, वो भी पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने के निमित्त हैं। कौन? यादव। क्या करते हैं? वो कैसे परिवर्तन करते हैं? दुनिया को ध्वंस कर देते हैं कि परिवर्तन करते हैं? है? पुरानी दुनिया को तो ध्वंस कर देते हैं, वो नई दुनिया कहाँ लाते हैं? हैं? हाँ, अगर वो विनाश न करें तो हमारे लिए नई दुनिया नहीं आ सकती। इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है, भक्तों के भी संबंध से, यादवों के भी संबंध से, और जो मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं उनके भी संबंध से। इसलिए तीनों के कार्य का पोता मेल देख रहे थे। तीनों का कार्य अपना अपना। भक्तों का कार्य क्या बताया? सिमरण में मस्त। और ब्राह्मण बच्चों का मुखवंशावली का क्या कार्य बताया? बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया के कार्य में सहयोगी थे। और यादव, वो तो है ही परिवर्तनकारी, क्योंकि उनके परिवर्तन के बगैर तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे बाबा कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, लेकिन है किसका हेड? यादवों का हेड है। तो क्या देखा? कार्य अर्थ निमित्त बने हुए तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर हैं, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता अति नहीं हुई है, अति की तीव्रता, तब तक अंत नहीं हो सकता। क्योंकि अति की निशानी अंत है। तीनों कार्य का फोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। भक्तों के पोता मेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होना है, उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ नाम मान शान के प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं। कौन सी दुनिया की बात है? ये तीनों हैं कौन सी दुनिया में? तीनों प्रकार के बच्चे क्योंकि बच्चों की ही बात हो रही है, बाहर वालों की तो बात हो ही नहीं रही है। और पोता मेल भी बाहर की दुनिया वालों का लिया जाएगा क्या? पोता मेल किसका लिया जाएगा हैं? बच्चों का लिया जाएगा। तो भक्तों का क्या बताया? 75% भक्त सिर्फ नाम मान शान के प्रति स्वार्थ के स्वरूप के भक्त हैं, इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है। बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं और 75% भक्तों ने नाम का शान का खाता अपना प्राप्ति करके पूरा कर लिया। तो जो 25% बचे हुए हैं लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं, उनों की भक्ति का फल इस पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है, नई दुनिया में नहीं। 75% तो प्राप्ति कर चुके, जो 25% बचे हैं वो भी इस पुरानी दुनिया में नाम मान शान की प्राप्ति कर लेंगे, नई दुनिया में नहीं करेंगे। क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होता है। फिर कब शुरू होगा? द्वापर से उन भक्तों का खाता शुरू होगा, वहां वो फिर भक्ति करने लग पड़ेंगे। ब्रह्मा की, ब्राह्मण परिवार की, तो उसकी गतिविधि क्या देखी कि भक्तों को भी अपने भक्ति का फल अभी अभी किया और अभी अभी मिला, अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य जमा नहीं होता है। भक्तों की प्राप्ति का रूप जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं और बहुत खुशी से उड़ने लगती है, तो ऐसे उड़ रही है, लेकिन वो अल्पकाल का उड़ना उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देता है। ये भक्त किस रूप में है ब्राह्मणों की दुनिया में? वही भक्त हैं जो बाप की बात को नहीं मानते, ध्यान नहीं देते, लेकिन दीदी दादी दादा इनके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि समझते हैं इनके पीछे लगने से हमको मान मर्तबा बहुत बहुत प्राप्त हो जाएगा। तो रूप इनका क्या बताया? जैसे चींटियों को बारिश के मौसम में पंख उड़े उगे आते हैं और बड़ी खुशी से ऊपर ऊपर उड़ती हैं, तो ऐसे ही उस सीजन में उनको उनका उड़ना ही उनको समाप्त कर देता है, वहां ही प्राप्ति और वहां ही उनकी समाप्ति। वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलयुगी तमो प्रधान भक्त अल्पकाल के फल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं, इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे कि समाप्त हुआ पड़ा है। क्योंकि आत्माएं तो तमो प्रधान शूटिंग में भी निकलती रहती है ना, सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है। जो होना है, जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे, उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। बाप को नहीं, शक्तियों को पुकारेंगे। अभी ये अति में जाकर के फिर समाप्त होने वाला है, तो भक्तों के पोता मेल का रजिस्टर समाप्त हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा हुआ है वो अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। तो ये था भक्तों का समाचार। दूसरा यादव सेना का समाचार, उन्हों के पोता मेल में क्या देखा? हर कदम पर उन्हों के क्वेश्चन मार्क देखे। कदम, जो कदम जीवन में आगे बढ़ाएंगे अर्थात जो भी कार्य करेंगे क्वेश्चन सामने आ जाएगा, प्रश्न चित्त होंगे। हर कदम पर उन्हें के क्वेश्चन मार्क देखने में आवेंगे। स्पीड तीव्र करने के बहुत से चात्रक देखे, लेकिन जितना ही स्पीड को तीव्र करते हैं उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। क्वेश्चन मार्क कौन से? एक तो आरंभ कौन करे, क्या है क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। उन क्वेश्चंस में एक ये क्वेश्चन मुख्य है कि जो कार्य करना है यादवों को वो उसका आरंभ कौन करे? कौन सा कार्य करना है उनको? विनाश का। मैं करूं या वो करे? दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है? अब करें या कब करें? तीसरा, फिर इसकी रिजल्ट क्या होगी? कौन करे, कब करें और करें तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है, कभी फिर क्या होगा? इस बात का संकल्प रूपी पानी छींटे के समान अग्नि को शीतल कर देता है, क्रोध ठंडा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, ये सब कराने वाला प्रेरक कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो यादव वंशी है वो कौन से विनाश के बम फोड़ेंगे या फोड़ने वाले हैं? दुनिया वाले तो बाहर की दुनिया में तो स्थूल एटम बम है, जिनके लिए बाबा ने बोला कि ऐसी गंध निकलेगी उनमें से, हवाएं ऐसी दूषित हो जाएंगी कि सूंघने मात्र से लोग खलास हो जाएंगे। यहां फिर कौन सी है, कौन सी ऐसी हवा होगी, कौन से एटम बम होंगे जिनमें से ऐसी हवा निकलेगी? हाँ, निंदा रूपी एटम बम, बड़े बड़े महारथियों के लूपोल्स, उनका धमाका बोलेंगे। तो वो भी सोच रहे हैं हम करें या कौन करे, पहले कौन करे शुरुआत, अभी करें या थोड़ा और ठहर जाएं, और फिर ये भी सोचते हैं इसकी रिजल्ट क्या होगी, हम बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। तो कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है, कभी फिर संकल्प का छींटा लग जाता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो डंडे पड़ जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या बताया कि इस सब का प्रेरक कौन है, ये सब कराने की प्रेरणा देने वाला कौन है, तो नाम तो बेचारे नहीं जानते, लेकिन प्रेरणा उनको मिल रही है। जो ब्रह्मा मुखवंशा वाली ब्राह्मण है वो जानते हैं कि प्रेरक कौन है, कौन कराए रहा है और किस विधि से कराए रहा है। क्योंकि करने वाला जो कराए रहा है वो तो परमात्मा बाप का फर्स्ट नंबर का बच्चा है, बड़ा बच्चा, वो कंस्ट्रक्शन करेगा या डिस्ट्रक्शन करेगा, वो तो कंस्ट्रक्शन ही करेगा। लेकिन जो भगत है अथवा जो यादव है वो उसके रूप को न पहचान पाने के कारण, उसके कार्य को न पहचान पाने के कारण वो ये समझते हैं कि ये निंदा कर रहा है। एडवांस नॉलेज को किस रूप में देखते हैं, इस रूप में देखते हैं कि ये तो ज्ञानी है, बड़े बड़े महारथियों की इसमें ग्लानी भरी पड़ी है। ये नहीं समझते कि ये वास्तविकता है। तो जो यादव संप्रदाय है वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। अब उनमें ज्ञान तो है नहीं जिससे स्थापना हो सके, सच्चाई तो है नहीं। बाबा ने जिन बातों के लिए मना किया है वो ही कार्य करेंगे। बाबा ने मना किया है दूसरे का अवगुण न देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, मतलब इंडिविजुअल किसी के अवगुणों को नहीं देखना है। एक सिद्धांत की बात होती है जो सामूहिक रूप से बताई जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इशारा नहीं होता। तो सिद्धांत की बात बताना वो तो ज्ञान की बात है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के, उसकी कमजोरियों को उछालना, लूपहोल्स को उछालना, ये हो गया एटम बम फोड़ना। क्योंकि बड़ों बड़ों की जब लूपहोल्स खुलेगी तो उनके पीछे जितना भी हुजूम है फॉलो करने वाला, उसका क्या हाल होगा, वो सब टूट पड़ेंगे, उनकी जो श्रद्धा विश्वास है वो कट जाएगा। तो उनको क्वेश्चन पैदा होता है, ये सब कराने वाला कौन है, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, निश्चित नहीं कर पाते कि कौन है। उन्हों की गतिविधि क्या देखी, अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे कि हम क्या हैं, पांडव हैं कि कौरव हैं कि यादव हैं, आखिर क्या हैं। होश और जोश इसी दुविधा में है, इसलिए स्वयं से भी परेशान हो जाते हैं, स्वयं से परेशान कब होते हैं? कारण क्या बताया? होश और जोश की दुविधा में बने रहते हैं, दो विधा, निश्चित नहीं कर पाते। कभी होश में आते, कभी फिर जोश में आ जाते, क्रोध में आ जाते। एकांतवासी बनना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती। काम तो ऐसे कर रहे हैं तो बुद्धि एकाग्र कैसे होगी? इसलिए बार बार जोश में आ जाते हैं, बहुत तेजी से प्लान बनाते हैं, फुल तैयारी भी कर लेते हैं। समय, सेना, शस्त्र, स्थान सब सेट कर लेते हैं। ऐसे ही समझते कि अभी हुआ कि हुआ, सेटिंग कर लेते कि इस टाइम पर अब ये धमाका बोलना है। जो उनकी फॉलो करने वाली सेना है उनके डायरेक्शन को वो भी तैनात कर लेते हैं। ऐसे ही समझते हैं कि अभी हुआ कि हुआ, बहुत फास्ट तैयारी में रहते हैं। क्या करना है? लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के सेकंड में, सारी तैयारी करने के बाद जो लास्ट प्रैक्टिकल सेकंड होता है, उसमें कंफ्यूज रूपी सिग्नल लग जाता है। इसलिए उन्होंने की तैयारी में सिर्फ प्रेरक के प्रेरणा की एक सेकंड की देरी है, ज्यादा देरी नहीं है। प्रेरक के प्रेरणा देने की एक सेकंड की देरी है। उसने प्रेरणा दी और उन्होंने काम किया। इंतजाम है लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा के इंतजार में है। उन्हों की गतिविधि अब सेकंड तक पहुंची हुई है। इंतजाम समाप्त हो इंतजार कर रहे हैं। काहे का कि प्रेरणा देने वाला हमको प्रेरणा दे। तो उन्हीं का पोता मिल संपन्न तैयारियों का देखा, वो एवर रेडी थे। और बाकी जो दो ग्रुप बताए, भक्त और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे, वो एवर रेडी नहीं थे। तो यादव अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं। रिफाइन तो है लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने का एक फाइल अभी भी रहा हुआ है। ये था यादवों का समाचार। अभी अपना सुनने की इच्छा है। प्रेरणा लेने वाले तैयार हैं लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है? यादवों को प्रेरणा देने वाला कौन है? हैं? यादवों को प्रेरणा देने वाला कौन है? यादवों को चलाने वाला होगा ना, तो कौन है? शंकर। तो शंकर अकेला होगा या उसका भी ग्रुप होगा? हैं? उसका भी ग्रुप होगा? हैं? हाँ, पूरी पार्टी होगी, पूरी रुद्रमाला होगी। वैसे कहावत है, देने वाला दे और लेने वाला थक जाए, लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे। लेने वाले कौन है? यादव संप्रदाय। उनको प्रेरणा नहीं मिल रही है, इसलिए वो बार बार थक रहे हैं, नहीं तो एवर रेडी हुए पड़े हैं, लेकिन उनको प्रेरणा देने वाले प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। दूसरा पेज, लेने वाले लेने के लिए तैयार हैं और देने वाले स्वयं में ही अब तक लगे हुए हैं। क्या हम तो अपनी तैयारी पूरी कर लें, उनको तो प्रेरणा बाद में दें? तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का पोता मिल क्या हुआ? वो जानते हो वा सुनाए? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी? विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की सुभावना मेजॉरिटी के पास इमर्जे कि ब्राह्मणों की दुनिया का परिवर्तन हो, ब्राह्मणों की दुनिया का कल्याण हो जाए। ये कल्याण की भावना तो है मेजॉरिटी में, लेकिन चलते चलते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क के कारण तीव्र नहीं होती है, ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। तो बीच में कोई न कोई रायल रूप की कामना शुभ भावना को मर्ज कर देती है, कामना आ जाती है। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रायल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। कभी शुभ भावना की ऊंची स्टेज में आते और कभी अपनी ही कामनाओं के जंजाल में फंस करके नीची स्टेज में चले जाते। तो ये कलाबाजी चल रही है, जैसे पके हुए फल को कामना रूपी पंछी खत्म कर देता है। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप न बनने का कारण भावना बदल कामना हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कामना वाला होगा वो फिर आने वाली परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए फिर पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता। वास्तव में ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। यह अनुभव भी किया होगा कि जिन दिनों संगठित रूप में योग का अभ्यास जास्ती होता है तो विनाश को पंखा लग जाता है, छुटपुट छुटपुट रिहर्सल होती रहती है, बाहर की दुनिया में भी और ब्राह्मणों की दुनिया में भी। इसलिए ब्राह्मणों के पोता मेल में अब लास्ट फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे कि संपन्न हुआ पड़ा है, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं, पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति, यादवों के परेशानी की परिस्थिति को समाप्त कर देगी। जब पांडव किस स्थिति में टिक जाएंगे? रूहानी शान की स्थिति में। मतलब अभी काय में आ जाते हैं, रूहानियत की जगह जिस्मानियत में आ जाते हैं, तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। समझा? तीनों का पोता मिल सुना। अच्छा, ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और सुभावना में परिवर्तन करने वाले कौन सी कामनाओं को? इस दुनिया के लिए जो भी कामना हम करते हैं, है? हाँ, वो अल्पकाल की कामनाएं, विनाशी कामनाएं, उससे डिले होगा। डिले डेंजरस, कार्य जल्दी नहीं होगा। भक्तों के अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाता बच्चों को कि मनुष्यों की रस्म रिवाज कलयुगी मनुष्यों की अलग है और तुम्हारी रस्म रिवाज अलग है। अभी तुम कितनी मीराएं हो, उन मनुष्यों का तो काम है विषय सागर में गोता खाना। विषय सागर में क्या होता है? कौन कुल बुलाते हैं? कीड़े। कीड़े क्या करते हैं? कीड़े कभी एक को काटेंगे, फिर दूसरे को काटेंगे, फिर दूसरा तीसरे को काटेगा, तीसरा पहले को काटेगा। सब कीड़े एक दूसरे को काटते रहते हैं। यहाँ कौन सा काटना है? काम विकार की काट सबसे बड़ी मार बताइए बावन। तो ये दुनिया भी एक प्रकार की विषय वैतरणी नदी बन गई है। इसमें सब एक दूसरे को काटते रहते हैं। अगर संबंध में स्वच्छता नहीं रही तो क्या होगा? मनसा को दुख जरूर होगा। क्या क्रिश्चियंस में ये परंपरा चलती है, एक पति छोड़ा दूसरा बनाया, या एक पत्नी छोड़ी दूसरी पत्नी बनाई? तो क्या जब ऐसा किया जाता है तो कुछ दुख नहीं होता होगा? हैं? उनको छोड़ने वालों को और ग्रहण करने वालों को क्या पिछला संबंध याद नहीं आता होगा? जरूर याद आता है। कन्याओं को तो खास है, क्योंकि कन्या पवित्र होती है, उसके ऊपर पहले पहले जिस व्यक्ति की छाप पड़ती है वो जीवन भर याद जरूर रहती है। तो वो दुख देती रहती है याद। इसको कहते हैं कीड़ों का कुल बुलाना। तो ये दुनिया है विषय सागर, विषय वैतरण नदी। ये विष पीना, विष खाना तो मीरा को भी पसंद नहीं था। अभी तुम कितनी मीराएं हो, तो तुमको भी ये विष पीना पसंद नहीं होना चाहिए। मतलब विष पीना पसंद नहीं होना चाहिए। और जिस तन में परमात्मा प्रवेश होकर के पार्ट बजाता है, संसार में जो रूप पूजा जाता है, उसको शास्त्रों में कैसे दिखाई दिया? क्या पीने वाला है? हैं? विष पीने वाला। तो जब विष पीने वाले का संग करेंगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो विष न पिए? हैं? अरे हैं? ने जो हिंदी जानते हो अच्छी तरह वो बोले।
भाई बोलता नीलकंठ।
नीलकंठ है, हाँ, नीलकंठ दिखाया जाता है। नीलकंठ का मतलब ये हुआ कि विष पिया तो, लेकिन मन बुद्धि के ऊपर असर नहीं होता, नहीं तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो विकार में जाते हैं ब्राह्मण, जब विकार में जाएंगे जिन दिनों या जिस दिन भी, उस दिन मनसा की स्टेज कैसी हो जाएगी, ज्ञान का विचार सागर मंथन चलेगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाता है, लेकिन शंकर के लिए चलता ही रहता है। उनको तो देखाते ही है सूक्ष्म वतन में सबसे ऊंची स्टेज में, ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज, विष्णु से भी ऊंची स्टेज, और बिल्कुल परम धाम के नजदीक। चाहे तो एक सेकंड में निराकारी स्टेज बना ले, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में साकारी। ये अभ्यास तुम बच्चों को यहाँ डालना है। ये डायरेक्शन किसने दिया? अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने दिया है। तो इस स्टेज को पहुंचने वाला, पाने वाला कोई एक पहला बच्चा निकलता है, जो अपनी बुद्धि को विकारों की मार से सेफ रखता है, जिसे कहते हैं कर्मों में डिटैचमेंट। कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना, लेकिन बेलगाव पूर्वक, लगाव पूर्वक नहीं। तो फिर विष पिया न पिया बराबर हो गया या कुछ असर पड़ेगा? बराबर हो गया, कोई असर नहीं पड़ सकता। अकर्म हो जाएगा। परमात्मा बाप की याद में रहकर के जो कर्म किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? अकर्म। लेकिन 100% याद होनी चाहिए। अगर 99% भी याद है और 1% देह अभिमान आया कर्म करते, तो उसका असर, हाँ, प्रभाव, इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो वो कन्या माताएं जो परमात्मा बाप के संरक्षण में आती हैं, बाप की बनती हैं, वो मीराएं विष पीती हैं या नहीं पीती हैं? क्या कहा जाए? है? विष नहीं पीती, विष नहीं पीती। क्यों? क्यों विष नहीं पीती? तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, शिव है एक, सगनियां है अनेक, शक्तियां हैं अनेक। तो पार्वतियां अनेक हैं और शिव एक है, और उसकी यादगार मंदिर में दिखाई हुई है। काहे की? इस बात की यादगार, कर्म की यादगार। वाणी में बोला है, तुम जो कर्म करते हो वो तुम्हारे कर्म और तुम्हारी वो कर्मेंद्रियां, मंदिरों में उनकी पूजा होती। कोई कोई देवता की हर कर्मेंद्रिय की पूजा होती है, और शिव शंकर की काय की पूजा होती है? सिर्फ लिंग की पूजा दिखाई गई। किसके साथ? पार्वती के साथ। तो बाबा ने तो टाइटल ले दिया, तुम सब पार्वतियां हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आगे या पीछे सबको पार्वती बनना है। लेकिन अभी वर्तमान समय ऐसा चल रहा है जिसमें सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र विकारी हैं, रावण की जेल में, रावण के प्रभाव में। अभी राम राज्य नहीं आ गया, राहु की दशा चल रही है, वृक्षपति की दशा संपूर्ण, नहीं कहेंगे किसी के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि मन कुछ न कुछ डोलाए, मन सबका होता जरूर है,
है?
सूर्य गुरु, हाँ, नंबर वार तो शुरू कहेंगे ही। सब एक जैसा पुरुषार्थ करने वाले तो नहीं है। तो वो तो एक ही पार्वती निकलेगी जिसकी बुद्धि उस दुनिया में किसी मनुष्य के अंदर न टिके, जिसकी दृष्टि इस दुनिया में किसी मनुष्य के पीछे डोलायमान न हो। उस पार्वती का गायन तो संपन्न है 100%, बाकी सब परसेंटेज में चली जाती है। माने जो 21 जन्म की साथी होगी प्रजापिता के साथ, उसकी बुद्धि तो संघ के रंग में आते हुए भी, कर्मेंद्रियों का संग करते हुए भी दोलायमान नहीं होगी, और बाकी सबकी कुछ न कुछ है दुलायमान जरूर होगी। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो व्यवस्था होनी है वो क्या होगी, हर आत्मा को 21 जन्म का साथी मिलेगा। मैं 21 जन्म का पूरा साथ देता हूं, तुम्हारे जो लौकिक बाप होते हैं हद के बाप, वो तो एक जन्म की शादी कराते हैं, एक जन्म के साथी के बंधन में, साथ के बंधन में बांधते हैं, और मैं तुमको 21 जन्म का पूरा साथ देता हूं, ये गारंटी है। तो ये तो निश्चित हो गया कि वहां व्यभिचार तो होगा ही नहीं। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ मेल फीमेल के संबंध में 21 जन्म तक बंधनी है, तो दूसरी आत्मा के साथ तो गठबंधन होगा ही नहीं। तो यहां जितने भी ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, वो सतयुग त्रेता में पहुंच करके कोई न कोई एक उनकी सहयोगिनी शक्ति ऐसी निकलेगी जो उनके समान पुरुषार्थी हो और 21 जन्म तक सदा साथ निभाने वाली। तो ऐसे ही प्रजापिता के लिए, प्रजापिता के उस पुरुषार्थ को पहुंचने वाली एक शक्ति निकलेगी, और बाकी सब क्या हो जाएंगी, हैं? विष पीने वाली क्या हो जाएंगी ना, मीराएं। तुम सब मीराएं हो, नंबर वार। कोई 1% विष पिएंगे, यानी बाप का बनने के बाद अगर किसी को याद किया तो क्या संकल्प से विष नहीं पिया, या किसी से दृष्टि एक क्षण मात्र के लिए भी मिलाई पर पुरुष से तो क्या विष नहीं पिया, या रज रज के बातें की पर पुरुष से तो क्या ये विष नहीं पिया। बाबा ने तो वाणी में कहा है कि समझते नहीं है कि संग का रंग कैसा होता है, कन्याओं को एकांत में किसी पुरुष के साथ बात भी नहीं करनी, अकेले में होकर उसका भी असर पड़ेगा। सबसे जास्ती संग का रंग लगता है कन्याओं को, तो सरेंडर्ड माताओं की तो बात छोड़ो, कन्याओं के लिए भी ये बात बोली हुई है कि तुम सब मीराएं हो, माने तुम सब क्या पीने वाली हो, विष पीने वाली। लेकिन इसमें कोई वो बात नहीं है, क्या गहरणीय बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर वार तो आखिर बन नहीं है, कोई तो 16,000 गोपियों की लिस्ट में जाएंगी। गोप का और गोपी का मतलब ही है जो उन्होंने गुप्त संबंध परमात्मा बाप के साथ जोड़ा, उस गुप्त संबंध को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं किया, क्योंकि प्रत्यक्ष दुनिया के सामने करेंगे तो दुनिया तो काहकी है, पुराने रीति रस्म रिवाज की, दुनिया थोड़े ही इस बात को मानेगी। ये तो ब्राह्मण परिवार के लोग इस बात को मान सकते हैं कि परमात्मा बाप ही एक पति परमेश्वर है, बाकी कोई पुरुष पति परमेश्वर नहीं हो सकता। तो 16,000 गोपियां गाई हुई है और बाकी 108 रानियां जिनको पटरानियों की भी स्टेज में देते हैं, और विशेष पटरानी की स्टेज भी शास्त्रों में दिखाई है, 8 रानियों की, 8 हैं पटरानियां। वो ऐसी हैं जिन्होंने अपने संबंधों को गुप्त नहीं रखा, प्रत्यक्ष कर दिया, क्या बहुत फोर्स में आ गई कि हम ही पार्वती हैं, क्या हमारे मुकाबले और कौन पार्वती हो सकता है। तो जब ऐसी चैलेंज आती है तो चैलेंज की परीक्षा भी कैसी होती है, कड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि विश्व के मालिक मालिकिन बनना उसकी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तो जरूर होगी। तो आठ पटरानियां ऐसी निकलती हैं जो पुरुषार्थ तो बहुत ऊंचा करती हैं, लक्ष्य तो बहुत ऊंचा लेती हैं, लेकिन माया के मुकाबले में धराशायी हो जाती है। कोई तो सदाकाल का साथ निभाती है पटरानियों में, कोई ऐसी भी होती है कि आज से लेकर के अंत तक लास्ट घड़ी तक साथ निभाती है, लेकिन लास्ट घड़ी में जाकर के पट्ट रानी बन जाती है। क्या पट्ट माना? पट्ट में जाके गिर पड़ी। माया का मुकाबला लास्ट घड़ी में हिम्मत छोड़ दी, नहीं कर पाया। तो आठ पटरानियां आती हैं आठ धर्मों से। विधर्मी आठ धर्म कौन कौन से हैं वो तो पता है, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन और हैं शंकराचार्य, संन्यास, हाँ मुस्लिम, सिख, सिख और आर्य समाज। लेनिन का स्टालिन जो है वो नवरत्नों में या आठ रानियों में किसी लिस्ट में नहीं आएगा, वो तो प्रजावर्ग की आत्मा है, वो परमात्मा बाप से कोई प्राप्ति नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा बाप कोई नहीं मानते, उसकी रचना कोई नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, कोई शास्त्र को नहीं मानते, तो उन्हें प्राप्ति कहां से हो जाएगी? उनका तो काम है डिस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करते ही नहीं, तो उनको प्राप्ति क्यों हो? तो आठ पटरानियां जो निकलती हैं, सात तो ये धर्म हुए आर्य समाज तक, और एक हुआ क्षत्रिय धर्म का विशेष। क्या? क्षत्रिय धर्म का विशेष पुरुषार्थ करने वाली पटरानी। इस तरह आठ पटरानियां बनती और आठ पटरानियां पुरुषार्थ करती हैं नंबर वार, लेकिन अंत में माया से हार खा करके पट्ट में गिर जाती, इसलिए उनका नाम रखा पटरानियां, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्शन है उनका, है तो पावरफुल आत्मा है, तो दूसरे धर्मों का जो कनेक्शन रहा है पूर्व जन्मों में वो उनको अपने टाइम पर शूटिंग पीरियड में आकर्षित कर लेता और वो नीचे गिर जाती। तो कौन सा धर्म बचा? देवता धर्म। एक राधा की ही सोल ऐसी है जो महारानी की स्टेज को पहुंचती है, तो इसलिए बोला तुम सब क्या हो? मीराएं हो। तो कुछ न कुछ ऐसा जो गर्हित काम करता है बाप का बने और फिर थोड़ा धोखा दे या ज्यादा धोखा दे, लंबे समय का कोई धोखा देता है, कोई थोड़े समय का, कोई लास्ट में फेल होता है, तो उसका अंजाम तो भोगना पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? परमात्मा बाप से बिछो हो जाता और दूसरे धर्म में कन्वर्शन हो जाता। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आठ पटरानियां हैं, वो उस स्टेज की पवित्रता का पालन नहीं कर पाती जिस स्टेज की पवित्रता का पालन पार्वती 100% स्टेज को जो पहुंचती है पार लगाने वाली। ऐसे तो सबको पार्वती का है, परसेंटेज में तो सब पार्वतियां हो, लेकिन 100% पार्वती एक होगी या सब होंगी? एक ही होगी। ऐसे तो सब सीताएं हैं, सब रावण की जेल में हैं, लेकिन उसमें भी परसेंटेज होगा ना, 100% सीता एक होगी या सब होंगी? 100% सीता तो एक ही होगी, वो कौन हुई हैं? पार्वती वाली आत्मा जो है वो राधा भी हो गई और मीरा भी हो गई हैं? नहीं हैं? मीरा के लिए बोला है मीरा दासी, दंड क्या मिलता है? परमात्मा बाप को किसी ने थोड़ा धोखा दिया, किसी ने जास्ती धोखा दिया, लंबे समय का, किसी ने थोड़े समय का। तो जो धोखा देना होता है परमात्मा बाप को, उसका दंड मिलता है कि उनको कुछ न कुछ किसी न किसी के नीचे कार्य करना पड़ेगा। जैसे बाबा ने बोला राम सीता को दास दासी जरूर बनना पड़े, कहाँ बनेंगे, सतयुग में जाकर के राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप बनेंगे। माना उन राधा कृष्ण की सोल ने कभी न कभी कोई न कोई टाइम ऐसा हुआ है शूटिंग पीरियड में कि पुरुषार्थ में उन राम सीता वाली आत्माओं पर जीत पाई है। जहाँ जीत वहाँ जन्म, जो आत्माएं जीत पाती हैं वो बच्चे के रूप में माँ बाप के यहाँ जन्म लेती। क्या माँ बाप टट्टी पेशाब साफ करने वाले बच्चों के क्यों बनते हैं? कौन सा ऐसा कर्म किया जो बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करनी पड़े, उनको 9 महीने गर्भ में धारण करना पड़े, उन आत्माओं को जन्म देने के लिए इतना वजन क्यों ढोना पड़ता? क्योंकि पूर्व जन्म में पुरुषार्थ में कोई न कोई ऐसी खोट आई है। जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के ऊपर विजयी होते हैं कोई पूर्व जन्म में, तब आकर के बच्चे बने। तो जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो राधा कृष्ण की आत्माओं ने संगम युग में सतयुग की शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ पर जीत पाई। तो पुरुषार्थ पर जीत पाने के कारण वो वहां जाकर के माँ बाप के रूप में दास दासी बनेंगे, फर्स्ट क्लास दास दासी। तो ऐसे ही ये जो 8 पटरानियां हैं उनको भी उस महारानी के आसपास चक्कर काटने वाली असिस्टेंट बनना पड़े। ये है संगम की बात। क्योंकि विश्व की महारानी होगी तो जरूर रानियां भी होंगी। तो इसलिए यहाँ बोला हुआ है कि तुम सब हो मीराएं। क्यों बोला? विष पीने वाली। किस आधार पर? मन के संकल्प से जरा भी अगर इधर उधर हुए, इसलिए बाबा बार बार वाणियों में बोलते हैं क्या, माम एकम, याद करो मुझे एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बेविचारी याद नहीं करना है। अब बेविचारी याद जो करते हैं उनके पाप भस्म होंगे, बेविचारी याद करने वालों के पाप भस्म नहीं होंगे, और ही ज्यादा चढ़ेंगे। एक तरफ परमात्मा बाप के साथ भी संबंध जोड़ रहे हैं, उनको भी याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरों को भी याद कर रहे हैं। तो विष पी लिया ना, पाप कर लिया ना, तो पाप का बोझ भी चढ़ जाता है। तो बोला तुम कलयुग की लोकलाज छोड़ती हो तो झगड़ा देखो कितना बढ़ जाता है। क्या कहा? तुम मीराएं जब उस कलयुग की लोकलाज को छोड़ती हो, उसकी लोकलाज की मर्यादा क्या है कि एक आदमी को पति जरूर बनाना है, ये गंदी दुनिया है। अगर किसी आदमी को तुम अपने जीवन का संरक्षक नहीं बनाओगी तो सुरक्षित नहीं रह सकती, वैश्या बन पड़ोगी। इसलिए शादी की परंपरा पक्की रखी हुई, शादी जरूर करानी कन्या की, घर में नहीं रखना है। तो उस लोकलाज की परंपरा में तुम मीराएं बंधने वाली नहीं हो। क्यों क्यों नहीं बंधने वाली हो? हैं? हाँ, हमारी तो परंपरा दूसरी है, हमारा तो संबंध सारा एक बाप परमात्मा के साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं है। दुनिया इस बात को माने ना मान, क्योंकि दुनिया तो परमात्मा बाप के रूप को ही नहीं मानेगी, स्वरूप को ही नहीं पहचानेगी। जब परमात्मा बाप के स्वरूप को ही दुनिया ने नहीं पहचाना तो वो तो कलंक लगाएगी कि ये तो लंपट है, कौन ये परमात्मा नहीं है, कौन है ये, स्त्रियों को भगाने वाला, कलंक को धारण करने वाला लंपट है, श्रेष्ठ दृष्टि से नहीं देखेगी, ऐसा धंधा चला रहा है, ये कोई सुरक्षा करने वाला थोड़ा ही है। तो उस दृष्टि से देखेगी, जब इस दृष्टि से देखेगी तो उसका कारण है कि दुनिया की परंपरा अलग है। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि ब्राह्मणों की परंपरा में अनेक संबंध नहीं होते। अनेक संबंध किसके साथ होते हैं? एक बाप के साथ। यहाँ तो बहुत थोड़े संबंध हैं जिनका फाउंडेशन बाप ने डाला हुआ है। कौन सा संबंध? भाई बहन और माता पिता, बस, दूसरा कोई संबंध नहीं। अगर संबंध है तो किसके साथ? एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़, उसमें सारे ही संबंध आ जाते हैं। मुख्य संबंध जहाँ बुद्धि जाती है, या बाप का संबंध है या पति का संबंध है। बच्चों के लिए बाप और स्त्री कन्या माताओं के लिए विशेष याद का पति का संबंध। तो ये सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं। इसलिए यहाँ बोला हुआ, तुम लोकलाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो, तुम कलयुगी लोकलाज छोड़ देती हो, तो देखो झगड़ा कितना बढ़ जाता है। जितना जितना ऐसे कलयुगी लोकलाज के बंधन को त्यागेंगे, मधुबन के वातावरण में भी रह करके त्यागेंगे, तो झगड़ा बढ़ेगा जरूर। क्यों क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपस में सब भाई बहन है। लेकिन नहीं, भाई बहन की दृष्टि भी धोखा देती जरूर है। आंखें बहुत धोखा देने वाले धोखा देने वाली इंद्रिय है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली है आंखें। अगर इनको पूरा कंट्रोल में न किया, थोड़ा भी दृष्टि गई, तो स्त्री पुरुष की दृष्टि तो विकार की ही जाती है। मुरली बोला हुआ, तो तुमको बाप ने श्रीमत दे दी है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र सामने रख दो। कौन सा चित्र सामने है जगत जीत बनने वालों का? हैं? हाँ, तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है। तुम्हें राय किससे मिलती है काम पर जीत पाने के लिए? एक बाप से, बेहद के बाप से, कि विश्व में शांति स्थापन कैसे हो सकती है। तभी सुख शांति स्थापन हो सकती है जब सर्व संबंध दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्मा है एक बाप से जोड़े, तो सुख शांति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अनेकों से संबंध द्वापर युग में जोड़ना शुरू किए तो क्या हालत हो गई? दुर्गति हो गई, अशांति बढ़ गई, दुख बढ़ गया। तो एक से संबंध जोड़ेंगे तो सुख शांति आएगी। कैसे होगी सुख शांति? वो तरीका बताया, शांति देवता कहने से बाप ही याद आता है। तो देवता क्यों कहा है? फिर तो शांतिदाता भगवान कहना चाहिए। भगवान को देवता क्यों कह दिया है? क्योंकि वास्तव में जिस तन में परमात्मा आता है, उस तन के द्वारा जब कार्य करता है, तो वो सूक्ष्म वतनवासी शंकर के रूप में स्टेज में स्थिर होने वाला देवता है। सूक्ष्म वतनवासी देवता, सरयू की देवता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतनवासी देवता है। तो शांति देवता कहने से बाप याद आता है। बाप ही आकर के कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आय लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े। ब्राह्मण ने तो कल्प की आय लंबी नहीं कर दी है। ब्राह्मण कहते हैं कल्प की आय अभी बहुत है, लंबी चौड़ी। कोई ब्राह्मण है आधार मूर्तों की दुनिया में या बीज रूप आत्माओं की दुनिया में जो ये कहते हो कि कल्प की आय अभी बहुत लंबी है, दुनिया विनाश होने वाली नहीं है? नहीं कहते। फिर ये इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलमाड़ियां अटारियां बनाते जाते हैं, सो क्यों है? कहते नहीं है मुख से, लेकिन चलन से उनकी ये बात साबित हो जाती है कि अभी ये दुनिया विनाश होने वाली नहीं है। तो आदमी मुख की भाषा पर इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल चलन जब देखता है तो उस बात पर विश्वास कर लेता है। तो वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। भक्ति मार्ग है दुर्गति मार्ग, ज्ञान को सदगति मार्ग कहेंगे। ऐसे ऐसे अक्षर तुम प्रदर्शनी में बोलेंगे, तो तुमको गाली देने लग पड़ेंगे। कौन कौन गाली देने लग पड़ेंगे? जो गुरु लोग शादियां कराते हैं, कन्याओं को सरेंडर कराएंगे और किसी आदमी को सौंप देंगे, यही तुम्हारी परवरिश करेंगे सेंटर चलाओ जाके। तो कोई मनुष्य किसी कन्या की सदगति नहीं कर सकता, उसकी पूरी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया ही कैसी है? रावण की दुनिया है, विभिचारी बनाने वालों की दुनिया है। इसलिए परमात्मा बाप कहते हैं कि तुम अगर ऐसे ऐसे अक्षर बोलेंगे, कैसे अक्षर, कि तुमने ये कोष अगर खोला हुआ है, धर्मशाला नहीं खोली हुई है, ये सेंटर नहीं खोले हुए हैं, ये आंख लड़ाने के कोष घर हैं, कोष घर माना है, हाँ पैसा इकट्ठा किया हुआ है और इसमें वैश्यालय चलाया जा रहा है, जात जाति के मनुष्यों के साथ कन्याओं को कोसा जा रहा है, तो ये कोष घर हैं। तो ऐसा अगर तुम कहोगे तो उनको गाली जरूर मिलेंगी, तुमको गाली देने लग पड़ेंगे। है तो राइट बात ना, क्या ये कोष घर खुले हुए हैं, एक के साथ संबंध जोड़ने का उपक्रम किया जा रहा है या अनेकों के साथ संबंध जोड़वाने का उपक्रम किया जा रहा है, सधवा बनाया जा रहा है या वैश्य बनाया जा रहा है? ये वैश्य बनाने की प्रवृत्तियां चल रही हैं सारी दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया से लेकर के 500 करोड़ की दुनिया तक। तो ये है ज्ञान और भक्ति। अभी तुमको भक्ति से वैराग्य, भक्ति मार्ग की परंपराओं से वैराग्य, क्योंकि भक्ति आती है देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा। गुरुओं का काम है शादियां कराना, खुद पवित्र रहेंगे और दूसरों की शादियां कराएंगे, कहेंगे तुम गृहस्थ में रहो, क्यों भाई उनकी पेट पूजा कहां से होगी? परमात्मा बाप बेहद का गृहस्थी है, खुद गृहस्थ में रहता भी है और दूसरों को भी शिक्षा ये देता है कि अगर तुम्हारी खुदान खास्ता ज्ञान में चलते चलते शादी हो भी गई तो भी क्या करो, अपने पति के साथ निर्वाह करो, छोड़ो नहीं। क्यों? क्योंकि लौकिक में जो संबंध छोड़ने के आदि बन जाएंगे ज्ञान में चलने के बाद, वो परमात्मा बाप को भी धोखा जरूर देंगे। तो ऐसा फाउंडेशन नहीं डालो, तोड़ निभानी है माताओं को। हाँ पति अगर परमिशन दे दे, परमिशन लेटर लेकर के फिर भले बाप के कार्य में लग जाओ, बाप के बन जाओ। तो बाप गृहस्थी बनाने के लिए आए हैं या घर गृहस्थी बिगाड़ने के लिए आए हैं? वो तो गृहस्थियों के, वो गृहस्थी मार्ग की शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो गृहस्थी जीवन को तोड़वाएंगे क्यों? तो ये है बेहद का वैराग्य, ज्ञान और भक्ति में अंतर है। ये सब बातें समझाने की हैं। पहले पहले तो ये पक्का निश्चय कराओ कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। फिर टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर के हमको पढ़ाते हैं, तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो, किनकी बायोग्राफी है जानते हो? तो कहते क्यों, क्या हमको बायोग्राफी सुनाओ? हाँ तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो, बाप आते ही हैं नरक को स्वर्ग बनाने। उनकी बायोग्राफी का जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? नरक की दुनिया को, जिसमें कीड़े कुल बुलाए रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, व्यभिचारी बनाए रहे हैं, उनको क्या बनाना? आप व्यभिचारी स्वर्ग बनाना, शिवालय बनाना। शिवालय में सब देवताएं आस पास मूर्तियां बैठी हुई है और बीच में शिव को दिखाया गया, तो सब किसकी पूजा करते हैं? एक की या अनेकों की? एक की पूजा करते हैं, तो वो हुआ शिवालय। और जहां अनेकों की पूजा हो वो हो गया वैश्य। टीचर भी है फिर साथ भी ले जाते हैं, आत्मा है तो अविनाशी है, वो अपना पूरा पाठ बजा करके घर जाती हैं, क्या कहा? अविनाशी आत्मा।